الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم تسہیل بہشتی زیور کتاب میں سے کتاب السلوک والاحسان پڑھتے ہیں، اور ان میں جو پہلا ٹاپک تھا وہ اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج تھا، اور اس کے بعد پھر اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے، پھر اس کے بعد جو تیسرا اور آخری ٹاپک ہے اس کے اندر وہ ہے شیخ کامل کے ساتھ تعلق. تو شیخ کامل کے ساتھ تعلق، یہ اخلاق ذمیمہ کے علاج اور اخلاق حمیدہ کے حصول کے اندر مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ ایک سبب ہے اپنا علاج کروانے کا. یعنی یہ شیخ کامل کیا ہوتا ہے؟ یہ معالج ہوتا ہے، یہ معالج ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ حکیم ہوتا ہے. تو شیخ کامل کے ساتھ تعلق کے اندر جو بالکل آخری موضوع ہے کہ مرید بلکہ ہر مسلمان کی روز مرہ زندگی کے آداب کیا ہونے چاہیے. مرید کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ ارادہ کرتا ہے. ارادہ کس چیز کا؟ یعنی مرید عام طور پر جو لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے تو شیخ کے ساتھ جو اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے اس کو مرید کہا جاتا ہے. تو اس کو مرید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ارادہ کرتا ہے. کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے اس شیخ کی نگرانی میں اپنی اصلاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے. تو اس کے لیے جو ایک فارمل طریقہ ہوتا ہے اس ارادے کو شروع کرنے کا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا دل میں آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ ہاں بھائی ان شیخ صاحب کے ساتھ جو ہے میں اپنی اصلاح کروں گا، ان کی گائیڈنس میں، ان کی نگرانی میں اپنی اصلاح کروں گا. تو دل کے اندر نیت کر لی، بس بات ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھ لیا، بنانا شروع کر دیا، ان کو جو ہے وہ اپنے احوال وغیرہ بتائے اور ان سے جو ہے وہ گائیڈنس سیکھ کری کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، آپ اس میں مجھے گائیڈ کر دیں. تو یہ ایک انفارمل، ایک غیر رسمی سا تعلق کہلاتا ہے. لیکن جو اس کا سنت طریقہ ہے اور جو کہ ظاہر سنت جو ہے وہ انسان کے مزاج کے مطابق جو کام ہوتے ہیں نا ان کو سنت کہا جاتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے جو بھی کام کیے، ٹھیک ہے، وہ کام ایسے تھے جو کہ انسانی طبیعت کے عین موافق تھے، انسانی طبیعت کے، انسانی مزاج کے، انسانی ضروریات کے، انسانی تقاضوں کے عین موافق جو کام تھے نا. یعنی انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، انسان کے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ فائدہ مند ہیں، بلکہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں کون سی چیزیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائیں. اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے ان کام کو دکھایا اور یہی سنت کہلائی. یعنی سنت کی ایک تعریف تو جو کتابی تعریف ہے وہ یہی ہے نا کہ جو اقوال اور احوال نبی علیہ السلام سے صادر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں، وہ سنت ہے. تو بھئی وہ افعال و اقوال جو نبی علیہ السلام سے صادر ہوئے، جو انہوں نے کیے، تو وہ تو سنت کہلائی نا. لیکن اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ہمارے لیے کیا ریلیونس ہے؟ رائٹ، ہمارے لیے کیا اس کا فائدہ ہے، کیا اس کا تعلق ہے ہمارا؟ مطلب ٹھیک ہے ایک ایک اللہ کے بندے آئے تھے دنیا کے اندر، بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے محبوب تھے اور سب کچھ تھے، تو انہوں نے ایسے ایسے کام کر لیے. تو ان کو جو ہے نا وہ پھر جو اسکالرس تھے، جو علماء تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ سنتیں ہیں، کتاب میں لکھ دیا کہ یہ سنتیں ہیں، ٹھیک
है ना। नाउ व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, हम क्या करें भाई इसका, राइट right? हमें क्या, ठीक है भाई सुन्नतें हैं, हम पढ़ लेंगे किताब के अंदर, ठीक है हम जो है वो उनको जान लेंगे और दिल चाहेगा तो हम उनके ऊपर कभी अमल कर लेंगे, लेकिन हमें हमें यानी हम क्यों करें दुनिया के अंदर इस वक्त मिसाल के तौर पर जो कामयाबियां नजर आती हैं, राइट right? वो तो गोरे साहब की सुन्नतों में कामयाबियां नजर आती हैं, है ना भाई, और अब तो ब्राउन साहब की सुन्नतों में भी बड़ी कामयाबियां नजर आनी शुरू होंगी। अब इंडिया भी जो है वो वर्ल्ड पावर बनने वाला है और जो है वो चांद पे पहुंच गया है और पता नहीं क्या, और क्या क्या हो गया है इंडिया के अंदर भी, तो कामयाबी इंडिया, राइट, हिंदू में कामयाबी नजर आती है, गोरे में कामयाबी नजर आती है, चीनी में कामयाबी, चीन चीन जो है वो कहाँ 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 नहीं पहुंच गया, क्या क्या कामयाबियां चीन ने हासिल कर ली, ठीक है ना, तो कामयाबियां तो इन लोगों की हैं, तो हम जो है वो इनकी सुन्नत पे क्यों नहीं अमल करें भाई, आज के जमाने में 21st सेंचुरी में तो चाइनीज की सुन्नत पे अमल करना चाहिए, राइट, यूरोपियंस की सुन्नत पे अमल करना चाहिए, चलो ठीक है यूरोप जो है वो अब उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, तो चलो चाइनीज की सुन्नत पे अमल कर लेते हैं, इंडिया वालों की सुन्नत पे अमल कर लेते हैं, 1400 साल पहले वाले जो एक शख्स गुजरे थे, ठीक है बहुत अच्छे आदमी थे, हैं हम सब मानते हैं बहुत अच्छे आदमी थे, तो उनकी सुन्नत पे क्यों अमल करें, ठीक है ना। तो अब आपसे अगर मैं सवाल पूछूं क्यों करें, तो अब देखते हैं किस किस ने बात सुनी थी और कौन कौन जवाब दे सकता है, क्यों करें भाई जी, अब बता दें जल्दी से क्यों करें, 1400 साल पहले गुजरे हुए एक अल्लाह के वली, नेक थे, बड़े प्यारे थे, माशाल्लाह जबरदस्त इंसान थे, बेहतरीन इंसान थे, लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद हम क्यों करें उनकी सुन्नत पे अमल, हम चाइनीज की सुन्नत पे क्यों नहीं अमल करें, हम ऑस्ट्रेलियंस की सुन्नत पे या अमेरिकन की सुन्नत पे या यूरोपियंस की सुन्नत पे या इंडियंस की सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करें, इंडियन से मुराद जो है वो गैर मुस्लिम, क्यों नहीं करें उनकी सुन्नत पे अमल। इन्होंने कहा कि आखिरत की कामयाबी उन सुन्नतों से ही हासिल होगी, अल्लाह आपको हिदायत दे, बहुत दिल दुखाती है आप, आखिरत की कामयाबी उन सुन्नतों से ही हासिल होगी, अल्लाह आपको हिदायत दे। दूसरे क्या जवाब दिया, उनमें इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा फायदा है, आखिरत में फायदा आखिरत में फायदा है, कुरान पाक में मेंशन्ड है कि अस्वा हसना है, तो कुरान पाक को भाई कुरान पाक में मेंशन्ड है, इस वजह से सुन्नत के मुताबिक ही फितरत है, नहीं दिल दुखाने वाले जवाब ना दें, दिल खुश करने वाले जवाब, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वाह क्या बात है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, इस वजह से चाइनीज की सुन्नत हम पे अमल ना करें, बेशक कामयाबी चाइनीज के रास्ते में मिल रही है, हम फिर भी चाइनीज की सुन्नत पे अमल ना करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अब मारे गए है ना, फंस गए हैं, मुसलमान हैं तो अब फंस गए हैं, अब चाइनीज की सुन्नत पे अमल नहीं कर सकते, इस वजह से अब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वी आर स्टक, राइट, दैट इज द आंसर, वी आर स्टक, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा, है ना, सही बात है ना, फंस गए हैं ना, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है ना, इस वजह से बस करना पड़ेगा, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है तभी हम मुसलमान होंगे, हमारे लिए कामयाबी की तारीफ ही मुख्तलिफ है, अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए, ठीक है ये है सही जवाब, ठीक है हमारे लिए कामयाबी की तारीफ ही मुख्तलिफ है, हम चांद पे जाने को कामयाबी मानते ही नहीं हैं, हम बड़े बड़े ब्रिजेस बना लेने को, हम स्पेस वॉर्स प्रोग्राम बनाने बना लेने को, हम जो है वो अच्छी अच्छी सड़कें बना लेने को, हम जो है वो एक से एक जो है वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज ईजाद कर लेने को, हम इनको कामयाबी मानते ही नहीं है, हमारे नजदीक तो कामयाबी का मेयार ही मुख्तलिफ है, तो ये जितनी कामयाबियां आपको चाइनीज में नजर आ रही हैं, यूरोपियंस में नजर आ रही हैं, इंडियंस में नजर आ रही हैं, हम कहते हैं ये कामयाबियां हैं ही नहीं, ये कामयाबियां हैं ही नहीं, दुनिया में ये कामयाबियां नहीं है, आखिरत की कामयाबी तो मरने के बाद आएगी, अभी जिंदगी की बात करें, दुनिया में हयात जिंदगी की बात करें, कामयाबी ये है ही नहीं, ये तो शैतान है। पिछली तफसीर क्लास किसी ने गौर से सुनी थी, मंडे को परसों वाली क्लास जो थी, राइट। ये शैतान तो झूठे वादे करता है, ये जो कामयाबियों के वादे कर रहा है ना, चाइनीज को फॉलो करके, इंडियंस को फॉलो करके और अमेरिकन को फॉलो करके, ये झूठे वादे करता है, शैतान के वादे हैं, ये झूठे वादे हैं, ठीक है। तो कामयाबी तो सिर्फ ओनली एंड ओनली सिर्फ किसमें है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके में कामयाबी है, और किसी किसी तरीके में कामयाबी नहीं है, ठीक है, किसी तरीके में कामयाबी नहीं है। तो 1400 साल पहले गुजरे हुए इंसान हैं, हमें दुनिया में भी कामयाबी उन्हीं के रास्ते में मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ, और आखिरत में भी कामयाबी उन्हीं के रास्ते में मिलेगी सिर्फ और सिर्फ, राइट। हसर है ये, हसर, हसर का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज के अंदर बंद कर देना, महसूर कर देना, बस, ठीक है। ये किस किस्म का मुसलमान है, किस किस्म का ईमान वाला है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के अलावा किसी दूसरे तरीके में कामयाबी देखता है, उसको कहीं और कामयाबी नजर आ रही है। किस किस्म का ये इंसान है, किस किस्म का ये मुसलमान है, किस किस्म का ये अल्लाह का बंदा है, राइट। हमें सोचना चाहिए अपने बारे में, हम किस किस्म के मुसलमान हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका छोड़ करके जो है वो किसी और तरीके में कामयाबी देख रहे हैं। वी नीड टू चेंज आवर ग्लासेस, राइट। हमें अपने गॉगल्स जो है ना वो चेंज करने की जरूरत है। तो क्योंकि आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया गया और आज सब इसको फालूदा कर रहे हैं, फालूदा बना के खा रहे हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल करके ही मिलेगी कामयाबी का असल सर चश्मा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ही है, ठीक है ना। तो पहले भाई, पहले तो ये सीखें कि जो गलत है ना उसको गलत कहना, उसको गलत समझना, ठीक है ना। ये अच्छी अच्छी बातें सीखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप गलत को गलत नहीं समझना शुरू कर दें। जब तक आप गलत को गलत समझना नहीं शुरू कर दें ना, उस वक्त तक सही सीखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। पहले नफी करनी होती है, निगेट करना होता है झूठी चीजों को, झूठे खुदाओं को, झूठे कामयाबी के सरचश्मों को, जो झूठे सरचश्मे हैं कामयाबी के, उनको पहले खत्म करना होता है अपने जहन से, ठीक है ना। फिर कहीं जा करके जो अच्छी बातें सीख रही है ना, तब उनका फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये झूठ जो है ना वो बसा रहेगा ना दिमाग के अंदर कि हाँ भाई ये भी सही है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, राइट, ये भी अच्छा है, तो उस वक्त तक ये नबी अलैहिस्सलाम की तरीके सीख करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भी जो है ना ये नहीं चलता, ये हमारे दीन के अंदर भी नहीं चलता, हमारे दीन में ही चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ही सही है, ही सही, भी सही नहीं है, ही सही है, ठीक है भाई। दोबारा कोई सवाल तो नहीं पूछा आपसे, वरना सर बदमजगी हो जाएगी खामोश। चले आगे चलते हैं कि ये जो हमने 37th वाला अदब पढ़ लिया था कि जो मजलिस खिलाफ शरा हो वहां हरगिज ना जाए, यानी बेपर्दगी जहां पर हो वहां ना जाए, मौसीकी जहां पर हो वहां बिल्कुल ना जाए, ठीक है। चाहे वो अपने रिश्तेदारों की शादी क्यों ना हो, अगर करीबी रिश्तेदारों की शादी है, और ये बड़े लंबी बहस जो है वो पिछली क्लास के अंदर हो चुकी है कि शादी वगैरह का के साथ क्या करना चाहिए, तो रिकॉर्डिंग में अलहमदुल्ला वो मौजूद है। तो आगे चलते हैं, 38, 38 नंबर है कि शर्मो हया और वकार के साथ रहे लोगों के साथ, यानी लोगों के सामने की बात हो रही है ना, ठीक है, कि ये जो वकार के साथ रहना, शर्मो हया के साथ रहना, तो ये इंसानों के साथ जो उठना बैठना होता है ना, तो उसके अंदर तमीज तरीके के साथ रहना, ऐसी जो है ना वो घटिया किस्म के काम ना करना कि जिससे कि लोगों के जहन में जो है ना वो अपनी इज्जत खराब होती हो, ठीक है। ये जो लोगों के सामने की इज्जत है, अगरचे के सबसे पहली अहमियत तो अल्लाह के सामने इज्जत है, ठीक है, कि अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अल्लाह ताला के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें अल्लाह की परवाह होनी चाहिए, है ना। ये बात तो तौहीद तो यही है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से सीखते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से सीखते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम से सीखते हैं ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो जो करना है नबी अलैहिस्सलाम से, जो हमने सीखा कि हमें ये करना है, तो अल्लाह ताला उसी से सबसे ज्यादा खुश होते हैं, उसी से खुश होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन, ठीक है। और जो चीजें नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दी हैं, तो वो वही चीजें हैं कि जिनसे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या हमें पता चलता है, कि नबी अलैहिस्सलाम लोगों के सामने भी शर्मो हया और वकार के साथ रहते थे, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम के जो जो करीब तरीन सहाबा थे, जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के करीब तरीन सहाबा थे, ठीक है ना। तो उनसे बाकायदा ये दुआ भी मनकूल है, अल्लाहुम्मा अज्अलनी फी आइनी सगीरा व फी आयुन नास कबीरा, कि अल्लाह मुझे मेरी निगाहों में छोटा बना दे, लेकिन अल्लाह के बंदों की निगाहों में बड़ा बना दे, यानी इंसानों की निगाहों में बड़ा बना दे। तो क्या चीज इससे पता चलती है, कि इंसानों की निगाह में इज्जत होना ये भी सुन्नत है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के खुलफाए राशिदीन के जो अफआल व आमाल है ना, वो भी सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम का बाकायदा हुक्म है कि मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के ऊपर अमल करो, मेरी भी सुन्नत पे अमल करो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे भी अमल करो, ठीक है। तो ये भी एक सुन्नत अमल है कि लोगों के सामने इज्जत, और नबी अलैहिस्सलाम से अगर ये ऐसी कोई दुआ मनकूल नहीं भी है, मेरे जहन में कम अज कम अभी नहीं आ रही, दुआ मनकूल अगर नहीं भी है कि अल्लाह इंसानों की निगाह में मुझे मेरी इज्जत बना दीजिए, तो कम अज कम नबी अलैहिस्सलाम के आमाल तो हैं ही ऐसे कि लोगों के सामने जो है ना वो अच्छे से रहते थे, ठीक से रहते थे। अच्छा, जैसे कि मिसवाक, ठीक है। अब मिसवाक जो है वो नबी अलैहिस्सलाम बड़ी पाबंदी से इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है ना। अल्लाह ताला को तो पसंद है ही मिसवाक, लेकिन मिसवाक की दूसरी अहमियत क्या है, कि जो साथ रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए वो यानी पसंदीदा चीज होती है, जो साथ रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए वो पसंदीदा चीज होती है, ठीक है, मिसवाक करना। क्योंकि जब इंसान के मुंह से बदबू आ रही होती है, तो उसके साथ रहने वाले जो लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है, उनको तकलीफ होती है, ठीक है। तो लोगों का ख्याल रखा ना, अल्लाह ताला को क्या हमारी बदबू से तकलीफ होगी, अल्लाह ताला तो इस चीज से पाक है कि हमारे मुंह से अगर कोई बदबू निकल रही है तो अल्लाह ताला को तकलीफ हो रही है, अल्लाह ताला को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचती ना हमारे मुंह से निकलने वाली स्मेल से, लेकिन हमारे साथ रहने वाले इंसानों को तो तकलीफ पहुंचती है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कितना एहतमाम के साथ में मिसवाक किया। अब नबी अलैहिस्सलाम जो है वो फरिश्तों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ही मामला था जैसा कि हमारा जो है ना वो आम इंसानों के साथ मामला होता है, हमें तो फरिश्ते नजर नहीं आते ना, तो हमारे लिए जो है वो इंसानों का ही मामला है कि भाई हमारे साथ कोई अगर इंसान है तो उसको हमारे मुंह से आने वाले बदबू से तकलीफ ना हो। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को फरिश्ते भी नजर आते थे और इंसान तो नजर आते ही थे, तो नबी अलैहिस्सलाम दोनों का ख्याल रखते थे, कि इंसानों को भी मुंह से निकलने वाली बदबू से तकलीफ ना हो और फरिश्तों को भी मुंह से निकलने वाली बदबू से तकलीफ ना हो। कहने का मकसद क्या है, कि अल्लाह ताला का तो ख्याल रखना ही है, और असल चीज तो अल्लाह का ख्याल रखना ही है, लेकिन इवन अपने साथ रहने वाले इंसानों का भी ख्याल रखना है, उनका भी, कि भाई उनको हमारी हरकतों से, उनको हमारी बातों से, उनको हमारी जो है वो पहनने ओढ़ने से तकलीफ ना हो, अजियत ना हो, ठीक है। तो लोगों के सामने जो है वो यानी वकार के साथ, तमीज तरीके के साथ, जो जो उस इलाके के नॉर्म्स हैं तो उनके मुताबिक, ठीक है। अब इसमें कोई ये कहेगा कि जी इसी वजह से तो हम अमरीका जाकर के जो है ना वो बुरका तक कर देते हैं, इसी वजह से तो हम अमरीका जाकर के जो है ना वो मुसलमानों वाला लिबास खत्म कर देते हैं, क्योंकि गोरों को जो है ना वो तकलीफ पहुंचती है, हमारे इस्लामी गेटअप को देख करके गोरों को तकलीफ पहुंचती है, इस वजह से हमने जो है वो इस्लामी गेटअप छोड़ दिया। ठीक है, तो भाई कुछ चीजों की अलग लिमिट्स होती हैं। एक तो औरत के ऊपर पर्दा फर्ज है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे वो कहीं भी हो, पर्दा तो उसके ऊपर फर्ज है ना। ठीक है ना, तो अब लोगों का ख्याल जो है वो अल्लाह के हुक्म के ताबे होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि लोगों के ख्याल की वजह से अल्लाह का हुक्म ही तोड़ना शुरू कर दें कि भाई लोगों को तकलीफ होती है हमारे लिबास को देख करके, तो चलो जी अब हमने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दें। ठीक है, तो पर्दा फर्ज है, लोगों का ख्याल उसके तहत होगा। अगर पर्दे के साथ आप लोगों का ख्याल रख सकते हैं तब ठीक है, वरना नहीं करना हमने लोगों का ख्याल। ठीक है, और मर्दों के लिए भी यही है कि जितना हो सके इवन वेस्टर्न मुआशरे के अंदर जा करके भी उनकी मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन तशाबह बिकौमिन फहुव मिन, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करी वो उन्हीं में से। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये है मर्दों के लिए, मर्दों के लिए रिलैक्सेशन है कि मुशाबहत का जो लफ्ज है ना, तशाबहा किससे निकला, तशाबहा तशाबो से निकला। ठीक है, तो तशाबो का मतलब ये होता है कि किसी की आप जो मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं वो दिल की मर्जी से कर रहे हैं, दिल की खुशी से कर रहे हैं किसी की मुशाबहत इख्तियार। तो नबी अलैहिस्सलाम के इस कॉल का मतलब ये होगा कि अगर आपने किसी दूसरे कौम की यानी किसी नॉन मुस्लिम कौम की दिल की खुशी के साथ मुशाबहत अख्तियार करी तो आपका हशर उन्हीं के साथ होगा। यानी दुनिया में बेशक आप मुसलमान कहलाते होंगे लेकिन कयामत के दिन आप मुसलमान कहलाने वालों में शामिल नहीं होंगे, कयामत के दिन मुसलमान कहलाने वालों में शामिल नहीं होंगे। खात्मा बिल ईमान नहीं मिलेगा आपको, खात्मा बिल ईमान नहीं मिलेगा अगर खुशी के साथ किसी काफिर कौम की मुशाबहत इख्तियार करी तो। मन तशाबह बिकौमिन फहुव मिन, वो उन्हीं में से होगा। ठीक है, तो अब मजबूरी की वजह से कि भाई बहुत ऐसे हालात हैं कि भाई जॉब करनी पड़ रही है और जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, और उसके बगैर जो है ना वो आपको फायर कर दिया जाएगा या वगैरह, तो उसके लिए फिर मजबूरी दिल की कराहियत के साथ उनके जैसे अगर ड्रेस पहनने पड़ रहे हैं तो वो तशाबों के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, वैसे तो उसके बड़े ऑल्टरनेटिव भी होते हैं, इंसान अगर अकल समझ के साथ और इल्म के साथ काम ले तो वो भी कर सकता है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन है मर्दों के लिए, क्योंकि मर्दों के ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दा फर्ज ही नहीं किया है, पर्दा तो औरतों के ऊपर फर्ज किया है। तो औरतें अमेरिका यूरोप जा करके पर्दा तर्क नहीं कर सकती कि उनको तकलीफ होती है मेरा बुरका देख करके, इस वजह से चलो जी बुरका नहीं पहनूंगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से शर्म हया वकार के साथ रहने में, कि जिस तरह से वो होता है ना कि दावत में गए हैं तो अब जो है वो नदीदों ही का लफ्ज पता होगा सबको इंशाल्लाह, नदीदों की तरीके से जो है वो खाना खा रहे हैं ना, इधर से भी खींच रहे हैं उधर से भी खींच रहे हैं, और जो है वो जल्दी से सारी बोटियां जो है वो मेरे प्लेट के अंदर आ जाए, और बोटी बोटी अभी बच्चों को भी हमारी आदाब की क्लास के अंदर सिखाया गया था कि हर बार जो है ना वो बोटी बोटी नहीं क्या करें खाने के वक्त। ठीक है, तो ये नदीदों की तरह से एक्ट करना कहलाता है। तो माँ बाप खुद भी जो है वो अच्छे तरीके से तमीज तरीके से एक्ट करेंगे कि भाई खाने के टेबल के ऊपर बैठे तो जो सामने मौजूद है वहीं से खाना लें। ठीक है ना, इधर उधर से जो है वो हाथ पैर मार करके, और यानी ये नहीं शुरू करते जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना, पता नहीं आजकल तो क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन जब हम शादियों में जाया करते थे पाकिस्तान में तो एकदम से जो है वो एक शोर उठता था ना, एकदम से आप बैठे हुए आराम से मेहमानों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, एकदम से जो है वो डन शोर उठना शुरू हो गया और लोग जो है वो भागना शुरू हो गया, पता है कि बड़े लोगों ने लतीफे भी उसके ऊपर बनाए हैं। तो वो क्या हो गया, अभी खाना लग गया, अभी खाना लग गया, खाना निकल गया, अब सब भाग रहे हैं जल्दी से ताकि जो है ना बस हमसे पहले जो है ना वो कोई कहीं दूसरे लोग कहीं खाना ले लें और हमारे लिए बोटियां खत्म ना हो जाए, हमारे लिए रोटियां खत्म ना हो जाए। ठीक है ना, नहीं तमीज से वकार के साथ। ठीक है ना, अब आप जो है वो सुबह से जो है वो भूखे रह करके अगर शादी में आए हैं तो ये आपका कसूर है, घर से भी कुछ खाना पीना खा घर के आते, ताकि ऐसा ना हो कि भाई इतना पेट जो है इतना खाली है कि अब जो है वो अगर यहाँ पे पेट भर के खाना नहीं खाया तो फिर जो है वो मौत को गले लगाना पड़ जाएगा। भाई घर से भी खा करके आ जाते, दोपहर का खाना खा रहे थे, शाम को चाय वाय पी करके आते, तो रात को इतनी सख्त भूख ना लगी होती आपको कि आप जो है वो खाना लगते ही जो है उसके ऊपर टूट पर पड़ रहे हैं। ठीक है, तो शादियों के अंदर, दावतों के अंदर इस तरह से बिहेव करना ये इंतहाई घटिया किस्म की हरकत होती है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि खुद भी इन आदाब का ख्याल रखना है और बच्चों को भी इन आदाब का सिखाना है। कुछ बड़े जो हैं वो तो कम से कम चलो ठीक है तमीज से रह लेते हैं, लेकिन बच्चों को उन्होंने नहीं सिखाया होता, तो बच्चे जो है ना वही उल्टी सीधी किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, खींच रहे हैं, तान रहे हैं, रोटियों के ऊपर लड़ रहे हैं या बोटियों के ऊपर लड़ रहे हैं या जो है वो बोतलों के ऊपर लड़ रहे हैं। हमारे जमाने में बोतलों के ऊपर भी बड़ा बड़ी लड़ाई होती थी, या किसी शादी के अंदर अगर पेप्सी की बोतलें आ गई तो फिर उसके बाद एक और ही टसल शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो बच्चों को भी इन आदाब को बहुत ज्यादा सिखाना कि भी शर्म हया और वकार के साथ रहें, अच्छे कपड़े पहने, सही मुनासिब लिबास पहने, ये काफिरों वाले लिबास ये नहीं पहने। ठीक है, जिसके अंदर के इंतहाई चुस्त किस्म के जो है वो टी शर्ट्स पहने हुए हैं, चुस्त किस्म के जो है पजामे पहने हुए हैं, जिससे कि पूरी की पूरी बॉडी के खदो खाल जो है वो नजर आ रहे हैं। राइट, या ये कि बिल्कुल स्लीवलेस शर्ट्स पहनना है। भाई लड़कों की बात करें, लड़कों लड़कियों के लिए तो तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि इस किस्म का ड्रेस पहने, लेकिन लड़कों में भी इंतहाई टाइट जो है वो पैंट्स पहनना और टी शर्ट्स पहनना और स्लीवलेस टी शर्ट्स पहनना। राइट, बनियान पहन करके जो है वो बाहर आए हुए हैं, सांडो पता नहीं वो किस किस्म की, वो अपना आपको कोई रेसलर या जो है वो बॉडी बिल्डर शो कर रहे हैं लोगों के सामने जा करके, अपनी बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो अपनी वीडियोस बना बना करके जो है वो सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो ये वकार के मुताबिक रहना नहीं होता। ठीक है, उसी तरह शॉर्ट्स पहनना, निकर्स पहनना, ये बिल्कुल वकार के खिलाफ है। ठीक है, ये शर्म हया के और वकार दोनों के खिलाफ है। ठीक है, तो अपने बच्चों की इस तरह से जहन साजी करना, इस तरह से तरबियत करना कि इस किस्म के जो लिबास और इस किस्म के गेटअप्स और इस किस्म के जो खुलिए हैं ना, उनसे उनके दिलों के अंदर खुद ही जो है ना वो कराहियत पैदा हो जाए, उनके दिलों में कराहियत पैदा हो जाए, अब वो उनको अच्छा ही ना लगे इस किस्म का जो लिबास है। ठीक है, उनको अच्छा ही ना लगे, उनको नफरत आए ऐसे लिबास। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि अल्लाह वालों के साथ उठना बैठना, अल्लाह वालों की मजालिस के अंदर जाना, जहां पे सुन्नत लिबास पहना जाता है, इमामा पहनते हैं हमारे मशायख। राइट, तो इमामे से मोहब्बत हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम का जो 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 जुब्बा, जो शलवार नबी अलैहिस्सलाम को पसंद थी, शलवार से, जुब्बा से, इमामे से बच्चों को जो है वो मोहब्बत हो जाए। जब माँ बाप को वो देखते हैं ना कि वो अल्लाह वालों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनको जो है वो यानी पसंद कर रहे हैं, उनके तौर तरीकों को पसंद कर रहे हैं, तो बच्चे जो है वो इस चीज को कॉपी करते हैं, उनके दिल के अंदर फिर इस इन चीजों की मोहब्बत आती है, इस लिबास की मोहब्बत आती है। ठीक है, बेवकार किस्म के कामों से माँ बाप को मोहब्बत होगी, टीवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो हंस रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो यानी एंजॉय कर रहे हैं, अब उसके अंदर तो मस्खरे होते हैं ना, जो टीवी ड्रामे और फिल्में इन सब के अंदर तो मस्खरे किस्म के लोग होते हैं ना, तो आप उनको जो है वो आइडियलाइज कर रहे हैं, तो फिर आपके बच्चे भी तो उसी किस्म की चीजों को आइडियलाइज करेंगे ना, उन्हीं चीज किस्म के यानी हरकतों को जो टीवी के ऊपर लोग करते हैं या स्टेज ड्रामे के ऊपर लोग करते हैं, उसी को लोग आइडियलाइज करेंगे। और उसी तरीके से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज भी, ये जो स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज होती हैं, फुटबॉल की हो या किसी और की हो, ये कौन से साहिब वकार लोग होते हैं, इनके जो लिबास भी जो है वो शर्म हया और वकार के तकाजों पे तो पूरे नहीं उतर रहे होते। तो हमारे जो दीनदार, बहुत सारे तो दीनदार हैं, उन्होंने एक 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 एक, एक, एक वो कोई फतवा निकाल लिया है अपना कि जी चूंकि हम जो है वो म्यूजिक और हम कॉन्सर्ट्स जो है वो नहीं देख सकते हैं, हम अपने बच्चों को कॉन्सर्ट्स में नहीं भेज सकते हैं, हम अपने बच्चों को जो है वो पब्स के अंदर नहीं भेज सकते हैं, और इस किस्म की चीजों में चूंकि हम बच्चों को नहीं भेज सकते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, दीनदार, ठीक है, दीनदार लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कमर्शियल स्पोर्ट्स में लगा देते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं जी। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लें, जो जो मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर हर जगह, हर मुल्क के अंदर जो मिडिल ईस्ट का मुल्क है, तो वहां पर एक है ना दीन दीन, ऊपर ऊपर से बहुत दीन दीन है। अब तो वो भी खत्म हो गया ना इवेंचुअली, क्योंकि खत्म होना ही था उसने, जब इस किस्म की आप हरकतें करेंगे तो फिर आपका दीन जो है वो ऊपर से भी खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था, कुछ अरसे पहले तक क्या था कि ये स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स यानी ये इनके यहाँ पहले टेलीविजन के ऊपर और पहले जो है ना वो इसके म्यूजिक नहीं आती थी ना, नाच गाना शराब कबाब ये सारी चीजें नहीं आती थी, तो अब इसका हल क्या निकाला था इन्होंने, भाई कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए ना, तो कमर्शियल स्पोर्ट्स, हर जगह कमर्शियल स्पोर्ट्स, ठीक है ना, हत्ता के इवन जो जो एयरलाइंस होती हैं उनके, जब आप किसी प्लेन में बैठते हैं सफर के लिए, तो वो आपका जो है ना वो दिखाते हैं ना, एयर होस्टेस और एयर होस्ट जो होते हैं वो आपको सीट बेल्ट लगाना सिखाते हैं पूरा एक, है ना, तो उसको भी जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर, कि भाई फुटबॉल टीम जो है ना वो सीट बेल्ट लगाना सिखा रही है, और ये यानी हर चीज इज फुटबॉल, एवरीथिंग इज फुटबॉल। तो ये जो है ना वो इन्होंने इन्होंने तो क्या क्या शैतान ने इनको एक दीनी हल बताया था एंटरटेनमेंट का, कि ये हलाल एंटरटेनमेंट है, ये जो स्पोर्ट्स हैं ये हलाल एंटरटेनमेंट है। तो भाई स्पोर्ट्स जो है वो हलाल एंटरटेनमेंट तो है, ठीक है ना, जो जायज स्पोर्ट्स हैं वो हलाल एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन जब आप वो स्पोर्ट्स भी काफिरों के तरीके पे अगर कर रहे हैं, या उसको जो है वो आप बिजनेस बना करके कर रहे हैं, कमर्शलाइज करके कर रहे हैं, तो अब जो है ना वो उसके अंदर हलाल वाला फैक्टर खत्म हो जाता है, अब वो हलाल नहीं रहती, अब उसके रास्ते से जो है वो सारा का सारा हराम जो है वो बड़े छुपे अंदाज में सारा का सारा हराम अंदर आ रहा होता है आपके, ठीक है ना, क्योंकि काफिरों के स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, काफिरों के जो है वो आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को अपना आइडियल बना रहे हैं, आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, ये रोनाल्डो और ये जितने मेसी और ये जो स्पोर्ट्स की जिनसे के आपके बच्चे मोहब्बत कर रहे होते हैं, तो भाई जिससे वो मोहब्बत करते हैं ना वो उसी के जैसे बनने की कोशिश करता है, और वो कोई नेक और साहिबे वकार और शर्म हया का पैकर इंसान तो नहीं है वो, तो आपका बच्चा उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा तो वो क्या है, काफिर है ना, राइट, उसको तो उसका तो आखिरत के ऊपर ईमान ही नहीं। इसी वजह से आप देख लें कि अब ये जितने के सारे जो है वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के मोहब्बत में जो गिरफ्तार हैं, तो अब इनके ईमान की क्या हैसियत रह गई है, क्या मुकाम रह गया है इनके ईमान का, तो ये चीज हलाल नहीं थी, ये शैतान ने हलाल बना करके पेश करी, हालांकि ये हलाल नहीं थी, क्योंकि इससे ईमान जो है वो खत्म होता है, आमाल खत्म होता है, ईमान खत्म होता है इनसे, ठीक है, तो ये जो बात है ना कि शर्म हया और वकार के साथ रहे, तो इसके लिए इन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जब तक आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे आप खाली जो है ना वो अपने वहमो गुमान के अंदर शर्मो हया और वकार के साथ नहीं रह सकते, राइट, जब आपकी मोहब्बत ऐसे लोगों के साथ है जो बेशरम लोग हैं, राइट, आपके जो 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 यानी आपके आइडियल्स हैं वो बेशरम और बेवकार किस्म के लोग अगर हैं, तो फिर आप शर्मो हया और वकार के साथ खुद भी नहीं रह सकेंगे, ठीक है ना, तो ना सिर्फ खुद रहना है बल्कि अपनी औलादों को भी सिखाना है, ठीक है, तो उनको भी ऐसी मोहब्बतों से बचाना है जो कि उनको बेशर्मी और बेहयाई और बेवकारी का शिकार कर दे, ठीक है भाई, किसी को कोई एतराज हो तो बता दें, गलत कहा जो भी कहा। अगला पॉइंट कि इस पर मगरूर ना हो कि मेरे अंदर ऐसी खूबियां हैं, यानी जो भी खूबियां मेरे अंदर हैं चाहे जैसी भी हो, ठीक है, सलाहियत जो भी हो, खूबियां से क्या मतलब होता है, अच्छी सिफात, अच्छी सलाहियतें, इन्हीं को कहते हैं इंसान के अंदर की खूबियां, माल पैसे का होना ये खूबियों में नहीं आता। खूबियों का ताल्लुक तो सिफात के साथ होता है ना, और सलाहियतों के साथ होता है। अब किसी का हाफिजा बड़ा तेज है तो ये एक सलाहियत है जो कि अल्लाह ताला ने उसको दी है, ठीक है ना। किसी का यानी नफासत है बड़ी। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, जैसे भी पीछे बात हुई है वकार के साथ रहने वाली, तो अब कुछ फैमिलीज के अंदर जो है ना वो अब ये चला आ रहा है, बुजुर्गों ने जो है वो वकार वाली जिंदगी गुजारी थी तो बच्चों ने उनसे जो है वो वकार के साथ रहना सीख लिया, ठीक है ना। बुजुर्गों से सीखते हैं ना फिर बच्चे, ठीक है ना। तो अब बच्चों के अंदर भी इस तरह की अच्छी सिफात आ गई है, ठीक है। तो इवन ऐसी सिफात भी जो है ना ये भी अल्लाह की तौफीक ही की वजह से है, इसके ऊपर भी इतराए नहीं, इसके ऊपर भी जो है ना वो घमंड का शिकार ना हो जाए कि ये तो मेरे बुजुर्गों की वजह से है। यानी अल्लाह को पिक्चर में से निकाल करके ये ना समझे कि मेरे बुजुर्गों की वजह से है। हाँ, मेरे बुजुर्ग अल्लाह वाले थे और उन्होंने जो है ना वो मुझे ये चीजें सिखाई, तो अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि बस बुजुर्ग बुजुर्ग ही रहें और अल्लाह ताला से कोई भी नस्बत ना हो अपनी इन सलाहियतों की, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ भी खूबियां हैं ये सब का सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो अब मैंने इस नेमत का भी जो है ना वो शुक्र अदा करना है, क्योंकि इन खूबियों का मुझे उसी वक्त फायदा होगा कि जब ये अल्लाह ताला के यहाँ कबूल भी हो जाएंगी, ये खूबियां ये सलाहियतें, ठीक है, कि मैं जो वो बड़ी जल्दी से कुरान मजीद मैंने याद कर लिया है, मेरे बच्चे ने जो है वो याद कर लिया, या जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो इल्म हासिल कर लिया और जो है वो इल्म को जो है वो अब बड़े अच्छे मार्क्स भी लेकर के आ गए, एग्जाम में भी बड़े अच्छे जो है वो सब कुछ मिल गए, अब जो है वो दूसरों को पढ़ा भी रहे हैं। ये सारी खूबियां हैं और ये अल्लाह की तरफ से हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कबूलियत ये एक अलग चीज है। आखिरत में तो फायदा कबूलियत ही की वजह से होगा, सिर्फ सलाहियतों की वजह से या सिर्फ अमल कर लेने की वजह से आखिरत का फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये बात आप अक्सर सुनती रहती होंगी और रिसेंटली काफी इसके ऊपर बात हुई है कि तौफीक मिल जाना ये कामयाबी की अलामत नहीं होती, ये अच्छी बात होती है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, लेकिन कामयाबी की अलामत तो कबूलियत है, ठीक है। तो रद्द कर दिए जाने से हर वक्त डरते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बेशक तौफीक दी है और मैं बड़े आमाल कर रहा हूँ, मैं बड़े दीन की खिदमत कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला बेनियाज हैं, अल्लाह ताला इन सब बातों को रद्द कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं कि नहीं चाहिए तुम्हारी नेकियां, नहीं चाहिए तुम्हारे मेरे मेरे नेक मेरे बंदों को जो तुमने रिस्क दिया है ना, कौन सा तुम्हारा अपना रिस्क था। सोचें जरा, अगर अल्लाह ताला हमें कयामत के दिन ये कह दें कि तुमने जो सदका खैरात किया तो क्या तुम्हारे बाप का था वो, ए? तुम्हारा अपना कोई जाती वो पैसा था जो तुमने सदका खैरात किया, मैंने ही तुम्हें दिया था ना, मैंने ही तुम्हें ये माल पैसा दिया, मैंने ही तुम्हें सेहत दी, मैंने ही तुम्हें सलाहियत दी कि जिसको इस्तेमाल करते हुए तुमने चीज पहुंचाई है खाली, तुम्हारा क्या कमाल है इसके अंदर, सारा कमाल तो मेरा है। तो अल्लाह ताला अगर ये कह करके हमें जहन्नुम में फेंक दें तो क्या हम वहां पे खड़े होकर के कह सकेंगे नहीं अल्लाह मैं जहन्नुम में नहीं जाता, आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, ये बड़ा गलत क्या काम किया आपने कि मुझे, मैं क्यों जहन्नुम में जाऊं, मैंने तो इतने नेक आमाल किए। हम में से किसी के अंदर ये सलाहियत है, किसी के अंदर ये हिम्मत है कि हम अल्लाह ताला के सामने डट के खड़े हो जाएं कि हम नहीं जाते जहन्नुम में, कबूल करो नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे आपसे, कोई कह सकता है अल्लाह ताला से, राइट। तो इस बात को सोच करके जो है ना, तो सही बात तो यह है कि अगर आप इस बात को हम कभी सोचें ना तो रोए बगैर रह नहीं सकते, खुसूसन जो जितना ज्यादा नेकी का काम कर रहा होगा ना उसको उतना ज्यादा रोना आएगा, ये बात सोच करके। जितना ज्यादा नेकी का काम करेगा उसको उतना ज्यादा रोना आएगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं कर रही हूं अगर अल्लाह ताला ने उसको रद्द कर दिया तो फिर क्या करूंगा, जो कुछ ना कर रहा हो तो उसके पास तो रोने के लिए कोई वजह ही नहीं है, है? उसके पास तो कुछ है ही नहीं जो अल्लाह ताला रद्द करे, जो कर रहा है वो रोएगा ना, जिसने के अपना इतना सारा कुछ आमाल बना के रखे हुए हैं उसको रोना आएगा कि नहीं रोना आएगा।
ठीक है, लेकिन काश कि हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं। और ये रोना जो है ना, ये दुनिया वालों के सामने रोना कि थोड़ी है, तो अल्लाह के सामने रोना है, तो इस रोने के अंदर तो कामयाबी कामयाबी है, मजे ही मजे हैं इस रोने के अंदर तो। तो किसी ने यहाँ पे लिखा है कि हम लोग जब छोटे थे तब स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में हिंदी राइटिंग कंपटीशन होती, और जो अच्छा करता उसको पैसा मिलता, तो क्या पैसा हराम है? ड्राइंग कंपटीशन और मेहंदी राइटिंग कंपटीशन, भाई क्या ड्रॉ कर रहे थे? अगर आप कोई हराम चीज ड्रॉ कर रहे थे तो फिर उसके ऊपर मिलने वाला पैसा भी हराम होगा, ठीक है ना? हराम ड्राइंग, आप वो तो आप जैसे बुत की ड्राइंग कर रहे थे या किसी बेशर्मी किस्म की चीज की ड्राइंग कर रहे थे, तो फिर तो वो ड्राइंग जायज नहीं थी, उसके ऊपर पैसे मिलने वाला। विलेज हाउस ये सब इसकी ड्राइंग में नहीं है, तो फिर ये तो बच्चों को ड्राइंग सिखाने के कॉम्पिटिशन होते हैं, मेहंदी मेहंदी राइटिंग पता नहीं, बहरहाल जो भी है मेहंदी राइटिंग मेहंदी लगाने के, ठीक है, तो ये इसमें कौन सी नाजायज बात है मुझे नहीं पता। तो इस तरह के ऊपर अगर कोई अवार्ड वगैरह या प्राइस वगैरह मिलते हैं तो वो पैसा हराम नहीं होता, ठीक है। अच्छा आखिरी चीज आज मुकम्मल करना है, हम तो जान छोड़ के नहीं दे रहे इस वाले टॉपिक, तो आज इंशाल्लाह उसको मुकम्मल कर लेते हैं। और ये इसमें तफसील की भी जरूरत नहीं है कि अल्लाह ताला से दुआ किया करे कि नेक राह पर कायम रहे, ठीक है, नेक राह पर कायम रहे यानी इस्तेकामत की दुआ करना, ठीक है, कि अल्लाह आपने पहुंचाया है नेकों के साथ, आपने जोड़ा है नेकों के साथ, ठीक है, तो अल्लाह इसको जो है ना वो मरते दम तक इस नस्बत को सलामत रख, इसको मरते दम तक रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, कि बस मेरा आसरा यही है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत कि बस मेरा आसरा यही है, और कोई मेरे पास नहीं है चीज, बस यही है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ लगे रहें जुड़े रहें। ये शैतान बदबख्त हमारा दुश्मन ये भरपूर मेहनत के अंदर लगा रहता है कि किसी तरीके से हमारी ये निस्बत टूट जाए, ये निस्बत हमारी कता हो जाए, राइट? सूरह बनी इसराइल की आयत के अंदर अभी हम यही पढ़ रहे थे ना, कि शैतान जो है वो कातिल, वो कता करने की कोशिश करता है, किस बात को कता करने की कोशिश करता है? निस्बत को कता करने की कोशिश करता है अपनी अस्वात के साथ, फी सौती का, या मिन क्या था वो, मिन सौती का ना, या अपनी आवाज के साथ, तो मिलती निस्बत को कता करने की कोशिश कर लो जितनी कर सकते हो, तो वो कर रहा होता है कोशिश, मौसीकी के जरिए से, अपनी जो है वो वसवसों के जरिए से, अपनी जो बुरे बुरे गलत गलत आइडियाज हमारे जहनों में डालने की कोशिश करता रहता है, क्या मकसद होता है उसका? नस्बत को कता करते, ताल्लुक को खत्म कर, ठीक है। तो अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते रहना कि अल्लाह इस नस्बत को की हिफाजत फरमा दीजिए, मेरे बस में नहीं है, ये इतनी कीमती चीज है कि इसकी हिफाजत करना मेरे बस में नहीं, राइट? मिसाल के तौर पर एक किसी घर की औरत को जो है ना वो आप एक 1 मिलियन डॉलर्स दे दें और उससे कहें कि जी आप 1 मिलियन डॉलर्स जो है ना वो हिफाजत के साथ जो है वो दूसरे मुल्क तक पहुंचा दें, अब वो 1 मिलियन डॉलर्स जो है वो तो आपके सूटकेस के अंदर भी इस तरीके से नहीं आ सकेंगे, आप बीच में स्कैनिंग होगी और न जाने कितने लोगों को पता चलेगा कि आप जो है ना वो 1 मिलियन डॉलर्स के साथ सफर कर रही हैं, तो आपको फिक्र होगी ना कि इतनी सारी चीज मैं इसकी हिफाजत भी नहीं कर सकती, ये तो इतनी कीमती चीज है मैं इसकी हिफाजत भी नहीं कर सकती, अल्लाह तू ही हिफाजत करवा दे किसी तरीके से। तो ये जो निस्बत है ना, ये जो दीन का ताल्लुक है, ये जो सिरात मुस्तकीम पर रहना है, ये सब एक ही चीज है, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब एक ही चीज है, सिरात मुस्तकीम पर रहना, ठीक है। तो इस ये इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हम खुद इनकी हिफाजत भी नहीं कर सकते इसकी, अल्लाह ताला से इसकी दुआ करते रहना। और दुआ इंसान किस चीज की करता है? इसी चीज की करता है ना जिसके ऊपर वो खुद कुदरत नहीं रखता हो। तो अगर कोई समझता है कि मैं तो खुद कर लूंगा ये वाला काम, तो वो दुआ करता है फिर उस काम के लिए, करता भी है ना, तो बस ऐसे ही रिवायती तौर पे दुआ कर लेता है ज्यादा से ज्यादा, वरना तो दिल से तो दुआ नहीं करता, राइट? यानी आप अभी कल अभी क्लास खत्म होने के बाद आप फॉर एग्जाम्पल चाय बनाने जाएंगे, ठीक है ना, आप मिसाल के तौर पर आपने चाय बनानी है या आपने जो है वो दोपहर का खाना बनाना है, ठीक है, तो
अब इसके लिए आप अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगे, ए अल्लाह प्लीज, ए अल्लाह मुझे खाना बनाने की तौफीक अता फरमा दीजिए, मैं तो खाना बनाने के ऊपर कुदरत नहीं रखती, मैं तो चाय बनाना मुझे नहीं आता, मुझे बस आप चाय बनवा दीजिए, और ए अल्लाह बस आप प्लीज मुझ पर रहम फरमा दीजिए कि मैं दोपहर का खाना बना लूं। कभी करेंगे आप इस तरह से दुआ? नहीं करेंगे ना, ठीक है ना, अनलेस ये कि आपको कोई बहुत ही बड़े खाने कॉम्पिटिशन के अंदर जाना हो, यहाँ पे आपके खाने के जो है वो बड़े बड़े लोग आकर चखेंगे आपका खाना और फिर आपको जो है वो पास और फेल करेंगे, तब तो शायद आप दुआ मांगेंगे, वरना तो आप दुआ नहीं मांगेंगे ना। क्यों नहीं मांगेंगे दुआ? इसलिए कि आपको कुदरत हासिल है ना चाय बनाने के ऊपर, राइट? आप समझती हैं, आप जानती हैं कि आप खाना बना सकती हैं, चाय बना सकती हैं, अंडा बना सकती हैं, तो उसके लिए तो आप दुआ नहीं मांगेंगी ना। दुआ कब मांगेंगी? जब कोई ऐसी मुश्किल चीज हो जो कि आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, जिसका तस्वुर आपके दिल में ऐसा हो कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, तब आप दुआ मांगेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो शख्स ये समझता हो कि जी मैं मुसलमान, मेरा बाप दादा मुसलमान, मेरा पूरा खानदान मुसलमान, और मैं जो हूं वो इतना नेक काम कर रही हूं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे साथ कुछ मसला हो जाए, राइट? कि मैं जो हूं वो नेक राह से हट जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। शैतान की क्या मजाल कि मुझे नेक रास्ते से हटाए, राइट? किसी इंसान की क्या मजाल कि मुझे जो है ना वो नेकी से रोके, मैं तो उसके यानी ईंट से ईंट और मतलब दांत तोड़ दूंगी मैं उसके, मैं तो उसके ईंट से ईंट बजा दूंगी, राइट? तो जो औरत ये समझती हो कि मैं तो नेक राह पर हूं और मैंने इसी पर रहना है, वो क्यों दुआ मांगेगी अल्लाह ताला से? वो तो नहीं दुआ मांगेगी ना। जिस तरह से जिस औरत को खाने बनाने के ऊपर कुदरत हासिल है, वो अल्लाह ताला से दुआ तो नहीं मांगती है अल्लाह खाना बनवा दीजिए मेरा, क्या ख्याल है? तो पहले तो ये एहसास पैदा करना होगा, पहले तो ये एहसास अपने अंदर होगा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं नेक राह पे रह सकूं, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ईमान पे खात्मा बिल खैर हासिल कर सकूं, खात्मा बिल खैर हासिल कर सकूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। पहले तो ये एहसास होगा अपने अंदर ना, तब जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करेगा, ठीक है? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो 40वां और आखिरी अदब मुरीद बल्कि हर मुसलमान के लिए फरमा रहे हैं, वो क्या है? अल्लाह ताला से दुआ किया करे कि नेक राह पर कायम रहे। इसके लिए ये एहसास शर्त है, प्री रिक्विजिट है इस एहसास का दिल के अंदर होना, ठीक है? किसी को सवाल है तो आप लिख के भी पूछ लीजिए, वरना अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी तौफीक से, महज आपकी तौफीक से, जो इतना लंबा अरसा लगा करके हमने किताब शरीफ वल एहसान भी पढ़ा, और उससे पहले हमने अखलाक व आदात नबवीया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमने पढ़े और उनके ऊपर हमने इतनी तफसील के साथ जो है वो बातचीत करी, तो ऐ अल्लाह इस सारी मेहनत को, इस सारे वक्त लगाने को आप अपनी रहमत से हमसे कबूल फरमा लीजिए, आप अपनी रहमत से हमसे कबूल भी फरमा लीजिए, और इस इल्म को जो कि हमने आपकी दी हुई तौफीक से हासिल किया, इसके ऊपर इखलास के साथ अमल पैरा होने की भी आप हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। इस दुआ के साथ हम इस क्लास का इख्तिताम करते हैं, आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगले हफ्ते से जो सिलसिला शुरू करना है तो इंशाल्लाह उसका कुछ आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बता देंगे, ठीक है? फिर थोड़ी सी ब्रेक लेकर के इंशाल्लाह हम अगली क्लास शुरू करते हैं। सारी माँ